इशिका और अभिमन्यु गार्ड से घिरे हुए थे। वे दोनों आदित्य और अर्पित के साथ उस अनजान आइलैंड में पहुंच चुके थे जहां राधिका को रखा गया था। राधिका जब आई थी तब उसके चेहरे पर डर और घबराहट के भाव थे। उससे अलग अभिमन्यु और इशिका दोनों ही काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे। राधिका को वहां लाया गया तब उसे ग्रीट करने के लिए सिर्फ आदित्य मर्चेंट ही आया था। गौतम मर्चेंट, जिसे अपनी फैमिली और एक्सपेरिमेंट के अलावा तीसरे किसी लोगों से कोई लेना देना नहीं होता था, वो खुद यहां उन्हें ग्रीट करने के लिए आए थे। गौतम अब तक इस बात से वाकिफ नहीं थे कि अभिमन्यु के साथ वहां इशिका को भी लाया जा रहा है। जब वो अभिमन्यु और इशिका के सामने पहुंचे तो इशिका को देखकर वो थोड़ा हैरान रह गए। गौतम ने इशिका को देखते हुए खोए हुए अंदाज में कहा, इस लड़की की शक्ल तो बिल्कुल यामिनी सिंघानिया से मिलती है। यामिनी सिंघानिया कौन थी, इस बारे में अभिमन्यु और इशिका दोनों ही अनजान थे, पर जिस तरह से गौतम ने इशिका को यामिनी सिंघानिया से जोड़ा था उसे इशिका समझ गई थी। जिसकी फोटो गौतम मित्तल ने ले रखी थी वो बिल्कुल इशिका की तरह दिखती थी। इशिका ने इस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने गहरी सांस ली और सख्त लहजे में कहा, मेरी माँ कहाँ है? वहीं जहाँ उसे होना चाहिए। उसकी तरह तुम भी बिल्कुल ठीक जगह पहुँच गई हो, गौतम ने एटीट्यूड से जवाब दिया। इशिका गौतम के बारे में जाने बिना उनसे कोई बहस या उनके साथ किसी तरह की बदतमीजी करती, उससे पहले आदित्य आगे आया और उसने गौतम का इंट्रोडक्शन देते हुए कहा, इशिका ये हमारे डैड हैं, इस हिसाब से रिश्ते में ये तुम्हारे। आदित्य की बात पूरी होने से पहले गौतम ने उसे बीच में काटते हुए कहा, मेरा इसके साथ कोई रिश्ता नहीं है, बेहतर होगा अगर ये मुझे मिस्टर मर्चेंट ही बुलाएं। गौतम के लहजे से साफ जाहिर था कि वो राधिका से काफी नाराज थे। इशिका को उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने उठकर कहा, और आपको ये क्यों लगता है मिस्टर मर्चेंट कि मैं यहाँ रिश्ते निभाने के लिए आई हूँ? मेरा रिश्ता सिर्फ मेरी माँ और मेरे पति की फैमिली से है। मुझे माँ से मिलना है और आज ही हम वापस जाने के लिए निकलेंगे। काफी हिम्मत है तुम्हारे अंदर, आज तक मुझसे इस तरीके से किसी ने बात नहीं की। मेरी उम्र का तो लिहाज करो लड़की, गौतम ने सार्केस्टिकली सिर हिलाकर कहा। उम्र का लिहाज कर रही हूँ तभी यहाँ आपसे आराम से बात कर रही हूँ, वरना आपने मेरी माँ के साथ जो भी किया उसके बाद मुझे शांत नहीं रहना चाहिए, इशिका ने सख्त लेकिन धीमी शांत आवाज में कहा। इशिका की इस गुस्ताखी पर गौतम कुछ नहीं बोले, बस वो उसे घूर कर रह गए। फिर उनकी नज़र इशिका से होते हुए अभिमन्यु पर गई। गौतम ने अभिमन्यु की तरफ गर्दन टेढ़ी करके देखा और फिर कहा, तो ये भी मिल गया, सुना है तुम दोनों ने आपस में शादी की है, बच्चा है तुम्हारे? उनका सवाल इशिका और अभिमन्यु दोनों के लिए ही ऑकवर्ड था। अभिमन्यु ने इशिका का हाथ पकड़ा और मिस्टर मर्चेंट से कहा, आपको दूसरों की लाइफ में इतनी दिलचस्पी क्यों है मिस्टर मर्चेंट? दूसरों की लाइफ में नहीं, बस तुम दोनों की लाइफ में, आखिर तुम दोनों इतने खास जो हो, गौतम ने जवाब दिया। फिर उन्होंने अर्पित और आदित्य की तरफ रुख करते हुए कहा, इन दोनों के लिए राधिका के ठीक पास वाला कमरा तैयार करवाया है, फ्रेश होने के बाद इन्हें राधिका से मिलने देना। रात को पूरा परिवार एक साथ डिनर करेंगे, वहीं डिसाइड करेंगे आगे का प्रोसीजर कब शुरू करना है। उन्हें ऑर्डर्स देने के बाद गौतम दूसरी तरफ जाने लगा। गौतम की बातों का मतलब समझते हुए इशिका ने पीछे से तेज आवाज में कहा, और आपसे ये किसने कहा हम खुद पर आपके वो घटिया एक्सपेरिमेंट करने देंगे? ये तो वक्त बताएगा, और वैसे भी तुम दोनों से पूछ भी कौन रहा है? तुम दोनों अपनी मर्जी से एक्सपेरिमेंट के लिए मेरे पास आओगे, गौतम ने उनकी तरफ देखे बिना पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा और फिर तेज कदमों से चलते हुए वहां से चले गए। इशिका और अभिमन्यु दोनों में से ही कोई आगे कुछ पूछ पाता उससे पहले आदित्य ने नरम लहजे में कहा, तुम दोनों मेरे साथ आओ। आदित्य ने उन्हें अपने पीछे आने का इशारा किया। अभिमन्यु और इशिका उनके साथ चल रहे थे। उन्होंने एक चीज नोटिस की, इस फैमिली के सभी लोग अपनी उम्र से काफी यंग और एनर्जेटिक लग रहे थे। शायद ये उनके एक्सपेरिमेंट का ही नतीजा रहा होगा कि उन्होंने उम्र को भी मात दे दी थी। कुछ ही देर में आदित्य इशिका और अभिमन्यु को उनके कमरे में ले आया था। वे उनके मेन विला के बाहर की तरफ बने विला में रुके हुए थे। विला की सिक्योरिटी काफी टाइट थी। अपने कमरे में जाने से पहले इशिका ने बगल वाले कमरे की तरफ देखा। आदित्य उसके इमोशन समझ सकता था। थोड़ी देर पहले गौतम ने इशिका को राधिका के बगल वाले कमरे में ठहराने के लिए कहा था, शायद इसी वजह से इशिका उस कमरे की तरफ देख रही थी। आदित्य ने गहरी सांस ली और इशिका के कंधे पर हाथ रखकर धीरे से कहा, पहले फ्रेश हो जाओ, बाद में बात कर लेना, शायद वो इस वक्त आराम कर रही होगी, लेकिन मुझे पहले मिलना है, उन्हें गायब हुए एक महीना होने को आया है, मैंने उन्हें देखा तक नहीं और मैं नहीं जानती वो यहाँ किस हाल में होगी, इशिका ने इमोशनल टोन में कहा। तुम्हारी चिंता जायज़ है, पर वो इस घर की बेटी है, हम उसके साथ किसी तरह का गलत बर्ताव नहीं करेंगे, आदित्य ने कहा और फिर इशिका के लिए उनके कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। इशिका और अभिमन्यु को उनके कमरे में छोड़ने के बाद वहां से जाने से पहले आदित्य ने कहा, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो लैंडलाइन से कॉल कर देना, वन मोर थिंग, इस फोन से सिर्फ तुम इस घर में ही कॉल कर सकते हो। आदित्य का इशारा साफ था, अभिमन्यु और इशिका चाहकर भी किसी को मदद के लिए नहीं बुला सकते थे। उन दोनों को वहां छोड़ने के बाद आदित्य चला गया। उसके जाते ही इशिका ने कमरे का दरवाजा बंद किया और अभिमन्यु के पास आई। इशिका के चेहरे पर हल्के घबराहट के भाव थे। क्या तुम्हें अंदाजा है वो लोग हमें कहाँ लेकर आए हैं, इशिका ने धीमी आवाज में पूछा।
नहीं, मैं नहीं जानता। हमारे यहाँ से निकलना भी आसान नहीं होगा। लगता है अनजाने में हम एक बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं, अभिमन्यु ने जवाब दिया और फिर ऋषिका को इशारा करते हुए राइट साइड ऊपर कोने में देखने को कहा। वहां एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, मतलब साफ था, उन पर नजर रखी जा रही थी। ऋषिका को उन पर गुस्सा आ रहा था। उसने झुंझलाते हुए कहा, मुसीबत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हमें यहाँ से निकलना होगा और साथ ही माँ को भी ले जाना होगा। फिलहाल जैसे ये कहते हैं उसके हिसाब से चलते हैं, लेकिन हाँ, हम हमारी बॉडी पर किसी तरह के एक्सपेरिमेंट नहीं करवाएंगे, चाहे सिचुएशन कितनी भी बुरी क्यों ना आए, अभिमन्यु ने ऋषिका की आंखों में देखते हुए कहा, जिस पर ऋषिका ने हाँ में सिर हिला दिया था। ऋषिका को बेहतर महसूस हो इसलिए अभिमन्यु उसके करीब आया और उसे अपने सीने से लगा लिया था। हमेशा की तरह ऋषिका को शांत करने के लिए वो उसके बालों में धीरे धीरे उंगलियां घुमा रहा था। उनके बीच एक खामोशी छाई हुई थी। उस खामोशी को तोड़ते हुए अभिमन्यु ने बिल्कुल धीमी आवाज में कहा, मिसेज राजवंश। ऋषिका ने नजर उठाकर अभिमन्यु की आंखों में देखा तो अभिमन्यु आगे बोला, चलो एक बात की तो तसल्ली तो है कि मैं तुम्हारे साथ जी नहीं पाऊंगा तो कोई बात नहीं, साथ में मरेंगे। वरना पिछली बार तुम्हारे मरने की खबर मिली थी तब एक एक सेकंड मुझ पर भारी पड़ रहा था। अभिमन्यु के ऐसा कहने पर ऋषिका ने उसके हाथ पर हल्का सा मारा। वो फिर से उसके सीने पर सर रखते हुए बोली, नहीं, हम इतनी आसानी से नहीं मरेंगे। अभी तो हमें एक्स्ट्रॉर्डिनरी बच्चे भी पैदा करने हैं। पता है ना हम दोनों कितने खास हैं, तो ऑफकोर्स हमारे बच्चे बिना किसी एक्सपेरिमेंट के ही खास पैदा होंगे। हाँ, वो तो है, अभिमन्यु ने जवाब दिया। फिर वो ऋषिका को परेशान करने के लिए बोला, अच्छा क्या लगता है ऋषिका, जिस तरह से उन्होंने कमरे में कैमरा लगाया है और हम इस अनजान आइलैंड में पहुंच गए हैं, लगता है कि कभी हमारे बच्चे पैदा होंगे? हाँ, मुश्किल तो है, पर मुश्किल तो तुम्हें यकीन दिलाना भी था कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। डोंट वरी, वी विल हैंडल एवरीथिंग। ये मर्चेंट फैमिली तुम्हारी राजवंश फैमिली से तो कम ही टेढ़ी लग रही है, ऋषिका ने सिर हिलाकर कहा।
हाँ, पर राजवंश फैमिली इस तरह इलीगल ह्यूमन एक्सपेरिमेंट नहीं करती, अभिमन्यु ने जवाब दिया। एक दूसरे को इस मुश्किल स्थिति में हिम्मत देने के लिए वो दोनों काफी हल्के तरीके से बात कर रहे थे। कुछ देर ऐसे ही बात करने के बाद ऋषिका और अभिमन्यु एक दूसरे से अलग हुए। फ्रेश हो जाने के बाद ऋषिका ने जब कमरे का दरवाज़ा खोलने के लिए अपना हाथ बढ़ाया तो उसने महसूस किया कि रूम लॉक था। ऋषिका गुस्से में दरवाजे पर जोरदार किक मारी। मुझे पता था वो कुछ ऐसा ही करने वाले हैं, ऋषिका ने गुस्से में चिढ़कर कहा। फिर वो दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगी। ऋषिका दरवाजे पर अपना गुस्सा निकाल रही थी, इस बीच अभिमन्यु वहां लगे लैंडलाइन के पास आया। वहां पास में एक नोटपैड रखा हुआ था जिसमें स्पीड डायल नंबर्स के बारे में लिखा हुआ था। अभिमन्यु ने तुरंत आदित्य का नंबर मिलाकर उसे कॉल पर कहा, हमें राधिका जी से मिलना है। ठीक है, मैं दरवाज़ा खोलने को बोलता हूँ, आदित्य ने सामने से जवाब दिया और फिर कॉल काट दी। अभिमन्यु ऋषिका को रोकने के लिए उसके पास आया ही था कि तभी कमरे का दरवाज़ा खुल गया। ऋषिका जल्दी से बाहर निकली और दरवाज़ा खोलने वाले गार्ड को घूरते हुए कहा, हमारे पास किसी तरह का हथियार नहीं है और ना ही हम जानते हैं कि इस वक्त हम कौन सी जगह पर हैं। भागने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आगे से कमरे का दरवाज़ा लॉक मत करना। उसके बाद उसने अपने कदम राधिका के कमरे की तरफ बढ़ा दिए थे। अभिमन्यु भी उसके साथ था। ऋषिका ने जैसे ही राधिका के कमरे का दरवाज़ा खोला, अपने सामने राधिका को देखकर ऋषिका के जैसे जान में जान आ गई। उसकी आंखें भीगने लगी थीं। राधिका उसके सामने बिल्कुल सही सलामत थी, पर हाँ, वो दिखने में कमज़ोर लग रही थी। वहीं राधिका ने अचानक ऋषिका को अपने सामने देखा तो उसकी भी पलकें भीगने लगी थीं। राधिका ने अपनी बाहें फैलाईं और ऋषिका को अपने पास आने का इशारा किया। ऋषिका जल्दी से दौड़कर राधिका के पास गई, वो उसके गले लग गई थी। ऋषिका और राधिका दोनों की ही आंखों में आंसू थे। वहीं श्रुति नाम की आंखों से मुस्कुराते हुए उनकी तरफ देख रही थी। इतनी मुसीबत में होने के बावजूद भी अभिमन्यु के चेहरे पर सुकून के भाव थे। जब से राधिका गायब हुई थी तब से ऋषिका ने एक पल भी चैन से नहीं बिताया था। जिंदा होने के बावजूद भी उसे मरने का दिखावा करना पड़ा क्योंकि उसे राधिका तक पहुंचना था। ऋषिका ने भारी आवाज में कहा, मुझे माफ कर दीजिए माँ, जो मुझे आने में देर हो गई। आई प्रॉमिस, मैं अब आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैंने आपको बहुत मिस किया। राधिका ने ऋषिका की बात का कोई जवाब नहीं दिया। कुछ पल ऐसे ही गले लगने के बाद राधिका उससे अलग हुई। अचानक उसके चेहरे के भाव सख्त हो गए थे। राधिका ने ऋषिका की आंखों में देखते हुए कांपती आवाज में कहा, लेकिन तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। ऋषिका समझ गई थी कि जो खतरा उन पर आया है उसे राधिका पहले ही भांप चुकी थी। उसने राधिका को तसल्ली देते हुए कहा, आप चिंता मत कीजिए माँ, मैं आपको यहाँ से बचा कर ले जाऊँगी। नहीं, तुम नहीं ले जा सकती हो, तुम अपनी बहन को भी नहीं बचा पाई ना ऋषिका, राधिका ने रोते हुए भारी आवाज में कहा। हमेशा ऋषिका को लेकर ओवर कॉन्फिडेंट रहने वाली राधिका के बर्ताव से लग रहा था कि वो ऋषिका से पूरी तरह निराश हो गई है। वहीं ऋषिका को अब तक लगता था कि उसकी बहन के बारे में राधिका को कुछ पता नहीं होगा और ना ही वो कुछ बताने वाली थी, लेकिन यहाँ तो राधिका पहले से ही सब जानती थी। ऋषिका अपनी बहन ईशानी को नहीं बचा पाई, ये उसकी सबसे बड़ी हार थी। ऋषिका ने अपनी नज़रें झुका ली थी।
अब उसे राधिका से सामना करने में शर्म महसूस हो रही थी। इशिका अपनी सफाई में कुछ कह पाती उससे पहले अर्पित कुछ गार्ड्स के साथ आया। उसने इशिका का हाथ पकड़कर उसे राधिका से अलग कर दिया था। अभिमन्यु के भी इर्द गिर्द गार्ड्स उसे गन पॉइंट पर लेकर खड़े थे। पहले टेस्ट का वक्त हो गया है, चुपचाप हमारे साथ चलो, वरना अपनी आंखों के सामने अपनी माँ को मारते हुए देखोगे, जैसे अपनी बहन को देखा था, अर्पित ने सनक भरे लहजे में कहा और इशिका को खींचते हुए वहां से ले जाने लगा।